राधिका ने आयशा और ऋषिका को डिनर के लिए सिंघानिया मेंशन बुलाया था। आयशा और नक्श तो पहुंच गए थे, लेकिन ऋषिका का अपने पति के साथ आना बाकी था। जैसे ही सिंघानिया मेंशन में किसी की गाड़ी के अंदर घुसने की आवाज़ आई, सब वेलकम करने के लिए बाहर आ गए थे। बाहर आने पर सब चौंक गए थे, क्योंकि बाहर अभिमन्यु की गाड़ी खड़ी थी। बाहर अभिमन्यु की गाड़ी देखकर एक पल के लिए तो आदर्श भी चौंक गए थे। उन्होंने धीरे से बड़बड़ाकर कहा, ईशिका अपने पति के साथ आने वाली थी, तो क्या अभिमन्यु राजवंश उसका? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वहीं नक्श ने आयशा की तरफ देखकर हैरानी से कहा, चाचू यहाँ ईशिका के साथ क्यों आए हैं? वो अपने पति के साथ आने वाली थी ना? वो सब लोग इधर उधर झांकते हुए गाड़ी के अंदर देखने लगे, लेकिन वहां ईशिका के अलावा सिर्फ ड्राइवर बैठा था। ड्राइवर को साथ में देखकर आयशा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, जरूर दादी ने जिद करके ईशिका को गाड़ी में भेजा होगा और चाचू मना नहीं कर पाए होंगे। अभिमन्यु ईशिका के साथ आ तो रहा था, लेकिन जैसे ही वो सिंघानिया मैंशन की तरफ मुड़ा, अभिमन्यु के पास एक कॉल आया। कॉल अटेंड करने के बाद अभिमन्यु ने ईशिका की तरफ देखकर गंभीर आवाज में कहा, सॉरी पर मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, घर यहीं पास में है, मैं चली जाऊंगी। मिसेस सिंघानिया से आपको फिर कभी मिलवा दूंगी। ईशिका ने काफ़ी आराम से जवाब दिया। उसके चेहरे पर नाराज़गी कहीं भी नहीं जाहिर हो रही थी। इतना कहकर ईशिका गाड़ी से उतरने को हुई, तभी अभिमन्यु ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। अभिमन्यु ने ईशिका से कहा, मैं बस एक डेढ़ घंटे में वापस आ जाऊंगा। सारे गिफ्ट कार में ही रखे हुए हैं, तो तुम कार लेकर जाओ, मैं और पृथ्वी दूसरी गाड़ी में बैठ जाएंगे। ईशिका ने उसकी बात पर सिर हिलाया। उसे अभिमन्यु परेशान लग रहा था, इसलिए ईशिका ने उसकी परेशानी दूर करने के लिए कहा, चिंता मत करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ और समझ सकती हूँ कि तुम्हारा टाइम कितना कीमती है। अपनी मीटिंग आराम से अटेंड करके आना। ईशिका काफ़ी मैच्योर थी और अभिमन्यु की मजबूरी समझ सकती थी। ये देखकर अभिमन्यु को भी अच्छा लगा। अभिमन्यु और पृथ्वी गाड़ी से उतरे और उनके पीछे आ रही बॉडीगार्ड की गाड़ी में जाकर बैठ गए थे, जबकि ईशिका उसकी कार लेकर सिंघानिया विला आई थी। सिंघानिया विला पहुंचने के बाद राधिका ने फिर से ईशिका से पूछा, तुमने बताया नहीं तुम्हारा पति कहाँ है? ईशिका उन्हें अभिमन्यु के बारे में बताने वाली थी, तभी उसकी नज़र नक्श और आयशा पर पड़ी। अगर वो वहां पर अभिमन्यु का नाम लेती तो वो दोनों यही कहते कि ईशिका अभिमन्यु की पत्नी बनने के ख्वाब देख रही है। वो अभी थोड़ा बिजी है, तो उसे आने में टाइम लगेगा, ईशिका ने जवाब दिया। आदर्श ने उसे देखकर सार्कास्टिकली कहा, कम से कम बहाना तो अच्छा बना लेती, तुम्हारा पति कौन सा बिजनेस मीटिंग्स अटेंड करता है जो वो बिजी होगा? आदर्श की बात के जवाब में आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, कम ऑन डैड, कुछ लोगों को दो वक्त के खाने के लिए भी ओवरटाइम करके एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है, हो सकता है वो ओवरटाइम करके कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा होगा। राधिका को इस तरह आयशा और आदर्श का ताना मारना पसंद नहीं आया। वो बात को संभालते हुए ईशिका से प्यार से बोली, कोई बात नहीं, थोड़ा रुक कर आ जाएगा। उसके बाद ईशिका ने ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने कार में से लगभग 7-8 गिफ्ट्स निकाले। हालांकि वो नक्श के लाए गिफ्ट जितने महंगे तो नहीं थे, पर हाँ वो भी अच्छी क्वालिटी के थे। उसके बाद ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं आपका बाहर इंतजार करूंगा। ईशिका ने सिर हिलाया। उसके बाद जब सब अंदर जाने लगे तो नक्श ईशिका के बगल में चलते हुए धीरे से बोला, मानना पड़ेगा ईशिका, तुम काफ़ी अच्छे से मेरे चाचू को बेवकूफ़ बना रही हो। उनकी गाड़ी ले आई, उनके दिए हुए गिफ्ट से शो ऑफ कर रही है। उन्हें पता तो है ना कि तुम यहाँ अपने पति के साथ सिंघानिया मेंशन में डिनर के लिए आई हो। सच का पता चलने पर बेचारे मेरे चाचा का दिल ना टूट जाए। तुम्हारे चाचू का तो पता नहीं, लेकिन इस वक्त तुम्हारे दिल का क्या हाल है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता नक्श राजवंश, ईशिका ने पूरी सख्ती से जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर नक्श का मुंह उतर गया था। अंदर आने के बाद राधिका ने कहा, हम तुम्हारे हस्बैंड के आने का वेट कर लेते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, हम डिनर कर लेते हैं, वैसे भी काफ़ी देर हो गई है, ईशिका ने जवाब दिया। ईशिका का बिजनेस अभिमन्यु जितना बड़ा तो नहीं था, पर हाँ एक बार काम आने पर घंटों फुर्सत नहीं मिलती थी। हालांकि अभिमन्यु ने प्रॉमिस किया था कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन ईशिका को यही लगा था कि अभिमन्यु को आने में टाइम लगेगा, बस वो वहाँ मिसेस सिंघानिया को देखने के लिए आई थी। नक्श और आयशा के वहाँ होते हुए ईशिका डिनर करके सीधे निकल जाना चाहती थी। ईशिका के कहने पर सभी डाइनिंग एरिया में आ गए थे। जैसे ही उन सबको डिशेस सर्व की गई, आयशा ने ईशिका की तरफ देखकर सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे हस्बैंड ने एक अच्छा खाना मिस कर दिया, मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी जिंदगी में कभी इतना अच्छा खाना देखा भी होगा। मॉम ने काफी अरेंजमेंट की है, चाइनीज, इटालियन, इंडियन, काफी सारे क्विजीन बनवा ली। मॉम आप ऐसा कीजिए कि उसके लिए खाना अलग से रख दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि सब खत्म हो जाए और बेचारे को आज रात भूखा ही सोना पड़े। ईशिका ने उसकी तरफ देखकर जवाब में कहा, डोंट वरी, वो एक वक्त के खाने का खर्चा उठा सकता है, हालांकि वो काफी हेल्थ कॉन्शियस है तो उसे ये सब पसंद भी नहीं आता, बट आई मस्ट से कि उसने ये सब टेस्ट जरूर किया होगा। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, अब तुम मुझे गलत समझ रही हो, राधिका के डर से आयशा ने तुरंत सफाई देते हुए कहा। उसके सफाई देने के बावजूद राधिका उसे डांटते हुए बोली, आयशा बस भी करो,
इशिका डॉक्टर मर्चेंट है। भले ही उसका पति कम कमाता हो पर उसके पास पैसों की कमी नहीं है। आपको कैसे पता कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है? अगर ऐसा होता तो ये पिछली बार स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपसे पैसे मांगने के लिए नहीं आती। आयशा ने जानबूझकर स्टॉक्स के बारे में चर्चा की ताकि उसे पता चल सके कि इशिका ने उन पैसों का आखिर किया क्या। आदर्श ने तुरंत इशिका की तरफ देखकर सख्ती से कहा, तुम पागल हो, तुम्हें इस चीज की कोई समझ नहीं है। मार्केट इस वक्त बहुत डाउन चल रहा है, ऐसे में कोई बेवकूफी इन्वेस्ट करेगा? जरूर इसने वो पैसे गंवा दिए होंगे, तभी अब तक इसके पास ना तो गाड़ी है और ना ही घर। भले ही ये डॉक्टर मर्चेंट हो लेकिन पैसे इसके पास अभी भी नहीं है, आयशा ने सिर हिलाकर कहा। इशिका की वजह से आयशा को आशीष को देने के लिए पैसे नहीं मिले थे, जिसकी वजह से माहिर को आशीष को मारना पड़ा। उसी का बदला लेने के लिए आयशा उसे फंसा रही थी। आदर्श राधिका से बोले, ये अच्छी बात है कि तुम बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पैसे इशिका वेस्ट कर रही है, तुम बच्चों को बिगाड़ रही हो। लेकिन इशिका ने कहा था कि उसे स्टॉक्स को लेकर कोई टिप मिली है और वो बहुत स्ट्रांग है, राधिका ने सफाई देते हुए कहा। आदर्श के बाद नक्श बोला, ये टिप वगैरह कुछ काम नहीं करती है, तुम्हारी खुद की तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से सिंघानिया फैमिली का भी नुकसान हो रहा है। कम से कम सोच समझ कर फैसला लिया करो, इशिका स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए अपने पैसे चाहिए होते हैं, ना कि उधार के पैसे। इशिका ने गहरी सांस ली और अपना मोबाइल उनके सामने करते हुए कहा, और तुम्हें किसने कहा कि मुझे नुकसान हुआ है? हालांकि इशिका ने कभी शेयर से पैसे कमाने का नहीं सोचा था, लेकिन अब जब उसने राधिका से पैसे ले ही लिए थे तो उसने उन्हें स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया था। उसकी डॉक्टर मर्चेंट और अनामिका के रूप में दो पहचान थी और कई लोगों का उसने फायदा करवाया था। उन्हीं लोगों की मदद से इशिका ने शेयर्स खरीदे थे और अब वो लगभग दोगुनी कीमत के आसपास थे।
इतना ज्यादा फायदा देखकर उन सबके मुंह खुले रह गए थे। राधिका को ज्यादा खुशी हो रही थी क्योंकि अब कोई इशिका पर सवाल नहीं उठा रहा था। फिर भी उन्होंने इशिका को समझाते हुए कहा, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन शेयर्स कभी परमानेंट नहीं होते हैं, उनके प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो तुम उन्हें बेच दो, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, मैं कल ही बेच दूंगी, पैसे एक दो दिन में आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, इशिका ने बिना किसी बहस के कहा, क्योंकि वैसे भी वो पैसे राधिका के थे। नहीं, मैंने तुम्हें पहले कहा था कि वो मैंने तुम्हें शादी का गिफ्ट दिया है, तो ऐसा करना कि उसे एक अच्छा घर खरीदना जिसमें तुम और तुम्हारा पति साथ में रह सके, राधिका ने जवाब दिया। उनकी बातों का मतलब साफ था, वो चाहती थी कि इशिका अब अपने पति के साथ रहे। ठीक है, इशिका बोली। आयशा ने महसूस किया कि उसके सारे दांव कमजोर साबित हो रहे हैं, ना तो वो इशिका के पति को नीचा दिखा पाई और ना ही स्टॉक्स के जरिए इशिका को। आयशा ने अपनी अगली चाल चलते हुए इशिका से कहा, इशिका, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अब तुम अपने पति के साथ सेटल हो जाओ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम राजवंश फैमिली में अभिमन्यु चाचू के साथ रहती हो। पहले तुम्हारी माँ यहाँ डेरा जमा कर बैठी थी और अब तुम मेरे ससुराल जाकर बैठ गई, नक्श ने आयशा का साथ देते हुए कहा। आयशा भी ठीक कह रही है, इसकी वजह से वहाँ के लोग मुझे भी गलत समझते हैं। देखिए, बुरा मत मानिए मिस्टर सिंघानिया, आप अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी बेटी को मान सम्मान दे सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली ऐसा नहीं करेगी, बोलते हुए उसने इशिका की तरफ देखकर कहा। तुम जानती हो ना तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम जैसे लोगों को बाहर तक नहीं निकलना चाहिए, लेकिन तुम हर जगह अपनी टांग अड़ाती रहती हो, पैसे मिल गए हैं ना, इन्हें लेकर कहीं दूर चली जाओ। नक्श और आयशा की बातें सुनकर राधिका हैरान रह गई। वो गुस्से में बोली, आयशा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम किसी के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आओगी, अभी के अभी जो कहा है उसके लिए सॉरी मांगो। मैं सॉरी नहीं कहूंगी, और यही प्रॉब्लम है आपकी, जो आप खुद की बेटी के बजाय एक नाजायज बेटी को सपोर्ट करती हैं, आयशा ने चिल्लाकर कहा। उसने अपनी आंखों में आंसू भर लिए ताकि उसका ये ड्रामा सच लगे। राधिका आगे कुछ कहते उससे पहले इशिका ने खड़े होकर कहा, मेरा पेट भर गया है, मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। राधिका इशिका को रोकना चाहती थी, लेकिन तभी इशिका ने कहा, मैं बस यहाँ आपको देखने के लिए आई थी, आप ठीक हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। राधिका भी समझ गई थी कि इशिका अगर वहाँ और रुकती तो उसी की इंसल्ट होनी थी। उसने मामले को समझते हुए कहा, ठीक है, फिर मुझे बाहर तक तुम्हारे साथ आने दो। बाहर आने के बाद राधिका ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए फिर आओगी? नहीं, इशिका ने सीधे सीधे जवाब दिया। इशिका के ना कहने पर राधिका का चेहरा उतर गया था। इशिका ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हम बाहर कहीं मिल सकते हैं, और इस बार मैं अपने पति को लेकर जरूर आऊंगी, आप उनसे मिलना चाहती हैं ना, तो आप दोनों की मीटिंग जल्द ही फिक्स करती हूँ। राधिका ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी और उसे गले लगा लिया। कुछ पल गले लगाने के बाद इशिका उनसे अलग हुई और फिर चली गई। इशिका के जाते ही राधिका के चेहरे के भाव सख्त हो गए थे। श्रुति उनके पीछे ही खड़ी थी। इस पर राधिका ने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया और उसके हाथ में दो चार बाल पकड़ाते हुए कहा, आदर्श और इशिका का डीएनए टेस्ट करवाओ और ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। गले लगाते वक्त राधिका ने इशिका के बाल निकाल लिए थे।
राधिका इशिका की बातों को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहती थी। जब उसने कहा था कि वो आदर्श की बेटी नहीं है, उसकी अचानक टेस्ट करवाने की बात सुनकर श्रुति चौंक गई। उसने जल्दी से पूछा, लेकिन इसकी क्या जरूरत है और तुम टेस्ट क्यों करवाना चाहती हो? राधिका ने गहरी सांस ली और नीचे देखने लगी। उनके हाव भाव से साफ था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती हैं। श्रुति उसकी बातों का मतलब समझ गई थी। उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, किसी को पता नहीं चलेगा और मैं जल्द ही यहाँ से दूर कोई लैब ढूंढकर इसे टेस्ट के लिए भेज दूंगी। राधिका ने उसे धीरे से थैंक्स कहा और अंदर आ गई। अंदर का माहौल काफी अच्छा था क्योंकि इशिका जो वहां से चली गई थी। आयशा ने जो भी किया था उसके बाद राधिका ने उससे ज्यादा बात नहीं की। उसके दिमाग में इशिका चल रही थी। हमेशा से उसे लगता था कि कुछ तो मिसिंग है और अब वक्त आ गया था जब उसके बारे में पता लगाया जाए। इशिका ने ठीक से डिनर नहीं किया था तो राधिका ने भी ज्यादा कुछ नहीं खाया। उन लोगों के डिनर हो जाने के बाद थोड़ी देर बातचीत हुई और फिर नक्श और आयशा वहां से चले गए। उन्हें छोड़ने के लिए आदर्श और राधिका बाहर आए, तभी एक हाउस हेल्पर जल्दी से दौड़ते हुए उनके पास आई। उसने सिर झुकाकर कहा, मिस इशिका के हस्बैंड आए हैं। अचानक आयशा के चेहरे पर चमक आ गई। भले ही इशिका वहां से चली गई हो, लेकिन आयशा के पास पूरा मौका था इशिका की एब्सेंस में उसके पति को नीचा दिखाने का। आयशा की नज़र हाउस हेल्पर के चेहरे की तरफ गई तो वो घबराई हुई लग रही थी। आयशा ने उसकी तरफ देखकर भौहें उठाकर पूछा, क्या हुआ, तुम इस तरह घबराई हुई क्यों लग रही हो? आप चलकर खुद ही देख लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा, हाउस हेल्पर ने जवाब दिया। अब तो आयशा के मन में इशिका के पति को देखने की एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई थी। आखिर कौन था वो शख्स जिसे देखकर हाउस हेल्पर थोड़ा डर गई थी।